परिशिष्ट अध्याय 13। वेदों में काव्य सौंदर्य और ललित कलाएं। वेदों में जहां आचार शिक्षा, नीति शास्त्र, आध्यात्म दर्शन, मनोविज्ञान, आयुर्वेद आदि की दृष्टि से अनंत भंडार विद्यमान है, वही काव्य शास्त्र की दृष्टि से विपुल सामग्री उपलब्ध है। वेद वस्तुतः दैवी काव्य है। इनमें काव्य के प्रायः सभी तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। अथर्ववेद में स्वयं इसको परमात्मा का अजर और अमर काव्य कहा गया है। यह कभी मरता नहीं है, अतः सनातन होते हुए भी नित नूतन है। पश्य देवस्य काव्यम् न ममार न जिर्यति। महामुनि भरत ने भी नाट्य शास्त्र में स्वीकार किया है कि चारों वेदों से नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य कोष्ठक संवाद कथोपकथन आदि कोष्ठक बंध कौमा सामवेद से संगीत यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस के तत्वों को लिया। नाट्यवेदम ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादि विनयान रसान अथर्ववर्णादपि। वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनमें उच्च कोटि के काव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। वेदों में भाव सौंदर्य अर्थ गांभीर्य उच्च कल्पनाएं रस छंद अलंकार आदि सभी तत्वों का प्रचुर मात्रा में समावेश है। शब्दालंकार यहाँ पर उदाहरण के रूप में कुछ विशिष्ट संदर्भ उपस्थित किए जा रहे हैं। भाषा सौष्ठव एवं पद लालित के कुछ उदाहरण ये हैं। इनमें अनुप्रास यमक आदि का प्रयोग दर्शनीय है। क धूरसि ध्रुव धुरंतम ध्रुवतम यो अस्मान ध्रुवति तम ध्रुव। ख मखस्य शीरो असि मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। ग त्रिवृदसि त्रिवृत्ते त्वा प्रवदसि प्रवित्ते त्वा विवृदसि विवृत्ते त्वा सवृदसि सवृत्ते त्वा। घ सहस्रदा असि सहस्राय त्वा। ग पूर्णात पूर्ण मुदचति पूर्ण पूर्णेन शिक्ष्यते। च आनन्दामोदाः प्रमुदो अभिमोद मुदश्य ये हसो नरिष्ठान रित्तानि शरीर मनु प्राविशन। छ कविभिर् निर्मिताम मीताम। ज कुलाये अधिकुलायम कोशे कोशः समुज्जितः। अर्थालंकार वेदों में सैकड़ों मंत्रों में उपमा अलंकार का प्रयोग है। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। पाप की लक्ष्मी मनुष्य को इसी प्रकार सुखा देती हैं, जैसे हरे भरे पेड़ को आकाश बेल। या माँ लक्ष्मी पतियालुरजुष्टा अभिच स्कंदवंद नेव वृक्षम। ईर्ष्या को दुष्परिणाम बताया गया है कि यह दावाग्नि की तरह मनुष्य को सदा जलाती रहती है। इस दावाग्नि को शांति रूपी जल से शांत करना चाहिए। अग्ने रिवावस्य दहतो दावस्य दहत पृथक एतामेतस्येर्ष्याम उदना अग्निमिव शमय। उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण, युद्ध में छोड़े हुए बाण इसी प्रकार उड़ रहे हैं जैसे सिर मुड़ाए हुए बालक। यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव। अतिशयोक्ति का एक उदाहरण, इस संसार को एक पत्थरों वाली नदी बताया गया है। इसको पार करने का उपाय बताया गया है कि दुर्जनों का संग छोड़ो और सज्जनों की संगति करो। अश्मन वतिरियते समरभध्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः अत्रा जहाम ये असन अशेवाह शिवान वयम उत्तरे माभी वाजान। रस निरूपण, वेदों में प्रायः सभी रसों का यथास्थान वर्णन हुआ है। श्रृंगार रस के संभोग और विप्रलंब दोनों पक्षों का विस्तार से वर्णन मिलता है। वीर रस हास्य रस अद्भुत रस भयानक विभत्स और वात्सल्य रसों का भी वर्णन मिलता है। यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ संदर्भ दिए जा रहे हैं। विप्रलंब श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन पूर्वा उर्वशी संवाद में मिलता है। चार वर्ष सहवास के बाद उर्वशी विद्युत पूर्वा पूर्ववश मेघ को छोड़कर जा रही है। पूर्वा विषिक्त मन है, वह आत्महत्या तक करने को तैयार है। उर्वशी उसे समझाती है कि तुम विलाप न करो, मैं वायु की तरह दुर्लभ हूँ, विद्युत की तरह उड़ने वाली हूँ। पक्षी जैसे अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार मैं जा रही हूँ। स्त्री का प्रेम स्थायी नहीं होता, अतः धैर्य रखो और घर जाओ। क पुरुर्वह पुनरस्तम परे ही दुरापनावात इवाहमस्मि। ख विद्युन्नया पतयन्ति दविद्योत। ग उदपप्ताम वसतेर्वयो यथा घ पुरुरवो मा पृथा न वयस्त्रैणानि सख्यानि सन्ति। इसी प्रकार संभोग श्रृंगार के अनेक संदर्भ अथर्वेद में प्राप्त होते हैं। एक प्रेयसी अपने पति को दुपट्टे में बांधकर रखना चाहती है जिसे वह किसी अन्य स्त्री की ओर न देख सके और न उसका नाम ले पावे, केवल उसका ही होकर रहे। अभी तो मनुजातेन दधामि मम वाससा यथासो मम केवलो नान्यासाम कीर्तयाश्चन। वेदों में विभिन्न रसों से संबद्ध अनेक सूक्त हैं, यहाँ केवल उनके संदर्भ दिए जा रहे हैं। क श्रृंगार रस से संबद्ध सूक्त। कामः कामस्य इशुः कामात्मा कामिनी मनोभिमुखीकरणम् स्मरः आदि। ख वीर रस से संबद्ध सूक्त। शत्रु दमनम् कौमा शत्रु नाशनम् कौमा शत्रु निवारणम् कौमा शत्रु पराजयः कौमा शत्रु बाधनम् कौमा अमित्र दंभनम् कौमा अमित्र क्षयणम् कौमा यजुः आदि। ग हास्य रस मंडूक सूक्त। घ अद्भुत रस शत्रु सेना सम्मोहनम् कौमा शत्रु सेना त्रासनम् कौमा सपत्न क्षयणो मणिः आदि। ग भयानक रस असुर क्षयणम् कौमा दस्यु नाशनम् आदि। च रौद्र और विभत्स रस यातुधान नाशनम् कौमा यातुधान क्षयणम् कौमा रक्षोदनम् कौमा आदि। छ वात्सल्य रस ऋग्वेद 1, 96, 5, 3, 55, 12 और 13। अलंकारों का प्रयोग। चारों वेदों के सैकड़ों मंत्रों में अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इनमें प्रमुख रूप से ये अलंकार प्राप्त होते हैं। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति आदि। छंदों का प्रयोग। छंदों के प्रयोग की दृष्टि से ऋग्वेद सबसे अधिक समृद्ध है। इसमें 20 छंदों का प्रयोग हुआ है। इनमें भी ये 7 छंद अधिक प्रयुक्त हैं। 1 त्रिष्टुप, 2 गायत्री, 3 जगती, 4 अनुष्टुप, 5 पंक्ति, 6 बृहति, 7 उष्णीक। इनसे ही लौकिक संस्कृत के अनुष्टुप, श्लोक, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वसंतिलका आदि छंदों का विकास हुआ है। भाव सौंदर्य। यजुर्वेद में विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। सब मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखूं, सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। काव्य सौंदर्य। ऋग्वेद के उषा सूक्तों में काव्य सौंदर्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। उदय होती हुई उषा एक अनुपम सुंदरी के तुल्य अपने वस्त्रों को चारों ओर फैलाती है। पृथ्वी से द्यूलोक तक सर्वत्र उसका ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है। अवस्युमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी स्वर्जनन्ति सुभगा सुदंसा आंताद दिवः प्रपथ आ पृथिव्याः। उषा को एक सुंदरी कन्या का रूप देते हुए सूर्य रूपी पति से मिलने के लिए आतुर प्रेमिका के रूप में उसका वर्णन किया गया है। वह मुस्कुराती हुई और वक्षस्थल को अनावृत करती हुई सूर्य के सम्मुख जाती है। कन्नेव तन्वा शाशदानाम एसि देवी देव म्यक्षमाणम संस्मयमाना युवती पुरस्ताद आविर्वक्षांसि कृणुते विभाति। ऋग्वेद में वाग तत्व के वर्णन में काव्य सौंदर्य दर्शनीय है। वाग देवी दृश्य होते हुए भी अदृश्य हैं। वह तत्वज्ञानी को ही अपना स्वरूप प्रकट करती हैं। इसमें वाग तत्व की रहस्यात्मकता और उसकी सहृदयता का सुंदर वर्णन है। उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् उत त्वः शृण्वन् न श्रोत्येनाम् उतो त्वस्मयि तन्वं वि सहस्त्रे जायेव पत्य उशति सुवासाः। भाव गंभीर और अर्थ गौरव। वेदों में भाव गंभीर और अर्थ गौरव के अनेक संदर्भ हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ मंत्र प्रस्तुत हैं। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोयुध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्यरे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः। इस शरीर को पवित्र अयोध्या नगरी कहा गया है। इसमें 8 चक्र 9 द्वार हैं। इसमें ज्योतिर्मय सुवर्ण का कोश है। इसमें एक चेतन यक्ष अर्थात परमात्मा रहता है, उसको ब्रह्मवेत्ता ही जानते हैं। इसमें योग शास्त्र का सारांश दे दिया गया है। इसी भाव को अन्यत्र दूसरे प्रकार से दिया गया है। पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर्गुणेभिरावृतम तस्मिन् यदि यक्षमात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः। इसी प्रकार यजुर्वेद में एक अध्यात्म परक महत्वपूर्ण मंत्र है। वेनस्तत् पश्य निहितं गुहा सद् यत्र विश्वं भवत्येक नीडं तस्मिन् निदं समच विचयति सर्वच स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। इस शरीर में एक ज्योति अथवा आत्मा गुप्त रूप से विद्यमान है, उसमें ही सारा संसार निवास करता है, उससे ही सारा संसार प्रकट होता है और उसमें ही लीन होता है। वह विभु परमात्मा इस संसार में ओतप्रोत है। इसमें यत्र विश्वं भवत्येक नीडं बहुत प्रसिद्ध सुभाषित है। इस मंत्र में अध्यात्म का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में सनातन और नवीन की बहुत सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। जो कल सनातन था आज वही नवीन है। इसके लिए दिन रात का उदाहरण दिया गया है। संस्कृतियां और सभ्यताएं दिन और रात की तरह परिवर्तित होती रहती हैं। केवल उनका स्वरूपांतरण होता है। जो आज नवीन है कल वह प्राचीन हो जाएगा, फिर समयांतर से वही प्राचीन नवीन रूप में आ जाता है। सनातन मेन माहो उदाद्य स्यात पुनर्णवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयोः। प्रश्नोत्तर। वेदों में अनेक गूढ़ अर्थों को प्रश्न उत्तर के रूप में स्पष्ट किया गया है। वेदों में ऐसे मंत्रों की संख्या 100 के लगभग है। कुछ विशिष्ट संदर्भ ये हैं। क ऋग्वेद 1:84-16-20, 4:23, 1:6-10-31, 7:8, 10:81-2:4, 10:129-6-7, 10:135-5-6, ख यजुर्वेद 17:17-21, 17:29-32, 23:9-12, 23:45-62, ग अथर्ववेद 10:21-25, 10:07-40, 20:76, 3:04। उदाहरण के रूप में एक प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न, सूर्य के समान ज्योति कौन सी है? समुद्र के तुल्य विशाल सरोवर कौन सा है? कौन पृथ्वी पर वर्षा करता है? किसके गुणों की मात्रा नहीं है? उत्तर, ब्रह्म सूर्य के समान ज्योति है। द्युलोक समुद्र के समान विशाल सरोवर है। इंद्र मेघ पृथ्वी पर वर्षा करता है। गाय के गुणों की सीमा नहीं, अर्थात गाय के गुण अपरिमित है। किम स्वित सूर्य समम ज्योति, किम समुद्र समम सरह, किम स्वित पृथिव्यै वर्षीयः, कस्य मात्रा न विद्यते। ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, द्यौ समुद्र समम सरह, इंद्र पृथिव्यै वर्षीयान, गोस्तु मात्रा न विद्यते। ललित कलाएं, शिल्प। ललित कलाओं के लिए वेदों में तथा परवर्ती साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग मिलता है। कौशित के ब्राह्मण का कथन है कि शिल्प में तीन चीजें आती हैं, नृत्य संगीत और वाद्य। त्रिविद वै शिल्पम नृत्यम गीतम वादितमिति। यजुर्वेद तैत्रीय संहिता, काण्व संहिता और काठक संहिता में अनेक स्थानों पर शिल्प का उल्लेख है। यजुर्वेद का कथन है कि ऋग्वेद और सामवेद में शिल्प विद्या है, अर्थात इनमें नृत्य संगीत और वाद्य का भी वर्णन है। ऋक् सामयोह शिल्पे स्थः। शिल्प का संबंध सभी देवों एवं शास्त्रों से है, अतः शिल्प को वैश्यदेव और वैश्यदेवी कहा गया है। शिल्पो वैश्यदेवः, शिल्पा वैश्यदेव्यः। आचार्य पाणिनि और पतंजलि ने शिल्प के उदाहरण में विभिन्न वाद्यों का उल्लेख किया है, जैसे मृदंग, मड्डूक, झरझर अथवा झांझ आदि। शिल्पम शतपथ ब्राह्मण में भी शिल्प में नृत्य गीत वाद्य को लिया है। गीत वाद्यादि शिल्प ही। ऐतरेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण में ललित कलाओं या शिल्प की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगिता बताई गई है। वह है आत्मसंस्कृति अर्थात चारित्रिक एवं नैतिक उत्थान। आत्मसंस्कृतिर्वाव शिल्पानि एतैर्यजमान आत्मानं संस्कुरुते। नृत्य और नृत्य भावाभिनय को नृत्य कहते हैं और केवल अंग संचालन को नृत्य। वेदों में दोनों प्रकार के नृत्य का उल्लेख है। नर्तक के लिए ऋतु शब्द है। नृत्य के समय सुवर्ण आदि आभूषण पहने जाते हैं। नृत्य के साथ हास्य की मुद्रा भी आवश्यक है। मर्तश्चिद वो नृतो रुक्म वक्षसः प्रांचो अगाम नृत्ये हसाय। नृत्य में सौंदर्य प्रदर्शन, अंगों का निसंकोच प्रसारण और भावाभिव्यक्ति भी संकलित है। प्रातःकालीन उषा का नर्तकी के रूप में वर्णन है। अधिपेशांसि वपतेन ऋतुरीव अपोर्डुते वक्ष उस्त्रेव वर्जहम। नृत्य में तीव्र वेग से चक्कर काटने की उपमा आंधी के वात्या चक्र से दी गई है। नृत्य में विविध रूप धारण करने की तुलना मोर, गंधर्व और अप्सराओं से की गई है। क अत्रा वो नृत्य तामीव तीव्रो रेणुर पायत। ख अद्रिम वावसानस्य नर्तयन। ग आनृत्यतः शिखंडिनो गंधर्वस्याप्सरापतेह। नृत्य के साथ संगीत और वाद्य की भी संगति होती है। ऋग्वेद में वर्णन है कि खुले मैदान में कृष्ण मृगों का नृत्य हुआ और उसमें गरुण पक्षियों ने गीत गाया। सुपर्णा वाचम क्रतोपद्यवी आखरे कृष्णा ईशिरा अनर्तिषु। एक अन्य मंत्र में वर्णन है कि परिवार के व्यक्ति, भाई बहन आदि सभी आमोद प्रमोद और हास्य के साथ पद संचालन करते हुए नृत्य करते हैं। संरभ्या धीरा स्वश्रीभिर नर्तिषु अघोषयंत पृथ्वी मुपब्धि। नृत्य सामान्य कोटि के लोगों के लिए है। सूत, सारथी आदि मनोरंजन के लिए नृत्य करते थे। इसमें ढोलक, तबला आदि का भी उपयोग होता है। नृताय सुत्तम, नृताय आनंदाय तलवम। संगीत, सामवेद संगीत प्रधान है। सामन का अर्थ है सस्वर मंत्र आदि का पाठ, अतएव सामवेद का अर्थ होता है सस्वर पाठ योग्य मंत्रों का संकलन। पूर्व मीमांसा में गीत या गान को साम कहा गया है। गीतीसु सामाख्या। बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है कि स्वर ही सामवेद का स्वत्व है। तस्य हैतस्य सामनो यः स्वं वेद तस्य स्वर एव स्वं। तैत्रीय संहिता का कथन है कि देवता सामन में ही निवास करते हैं, न ऋचाओं में और न यजुष में। देवा वै नर्चि न यजुषि आश्रयन्ते ते सामनि एवाश्रयन्ते। यजुर्वेद में श्लोक के साथ स्वर का उल्लेख है। प्रार्थना की गई है कि मुझमें संगीत हो, कवित्व हो, यश और विद्या हो। स्वरश्च मे, श्लोकश्च मे, श्रवश्च मे, श्रुतिश्च मे। यजुर्वेद का कथन है कि मह महोत्सव के साथ आमोद प्रमोद भी होना चाहिए। महश्च मे, क्रीड़ा च मे, मोदश्च मे वाद्य। ऋग्वेद और अथर्वेद में इन वाद्यों का उल्लेख है। एक वीणा, सितार के लिए शुभ अवसर पर इसका वादन होता था। वीणा बजाने वाले को वीणावाद, वीणा गाथिन, वीणा गणिकिन और वीणा गणगिन कहते थे। वीणा में 3, 7 और 100 तारों तक का वर्णन मिलता है। दो तुणव, यह मुरली या बांसुरी के लिए है। मुरली बजाने वाले को तुणवध्म कहते थे, इसकी ध्वनि तीव्र होती थी। 3 शंख, यह शंख के लिए है। शंख वादक को शंखध्म कहते थे। 4 तलव, यह ढोलक या तबला है। तबला बजाने वाले को पाड़िध्न कहते थे। 5 आडंबर, बड़ा ढोल, ढोल बजाने वाले को आडंबराघात कहते थे। 6 वाणीची, बांसुरी के तुल्य मुख से बजाया जाने वाला वाद्य रथ आदि में मनोरंजनार्थ रखा जाता था। रथे वाणीची अहिता। 7 सुरमी, सुरमी यह हारमोनियम के तुल्य वाद्य था। इसमें बीच में छिद्र होते थे। प्रत्येक मनुष्य के तालु में ऐसी स्वरतंत्री विद्यमान है जिससे वह सप्त स्वरों का उच्चारण कर पाता है। 8 करकरी, करकरी यह बीन है। 9 गरगर, घड़े की आकृति का वाद्य। 10 गोधा, वीणा के तुल्य वाद्य। 11 पिंगा, ढोलक के तुल्य वाद्य। 12 वेणु, वंशी अथवा मुरली। 13 नाड़ी, नाली बांसुरी। 14 बाण, यह वीणा है। 15 आघाट, आघाटी यह झांझ या मंजीरा है। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इन वाद्यों का उल्लेख किया है। तुर्य, तुरही, मृदंग, मृदंग, मार्दगिक, मृदंग बजाने वाला, पणव, ढोल, नगाड़ा, पाण्डविक, ढोल बजाने वाला, मड्डुक, डुडुक जैसा छोटा वाद्य, झरझर, झांझ, बीड़ा, दरदर अथवा दरदुर, घड़ा, दार्दुरिक, मिट्टी का घड़ा बजाने वाला।